him say here yes. that Donald Trump, you're a liar.
किसी भी नेता ने भारत के ऑपरेशन रोकने के लिए नहीं कहा.
इस देश के नागरिकों की सुरक्षा की जिम्मेदारी किसकी है? क्या इस देश के प्रधानमंत्री की नहीं है? क्या इस देश के गृह मंत्री की नहीं है? क्या इस देश के रक्षा मंत्री की नहीं है?
जिन्होंने बेसरन घाटी में हमारे प्रवासियों को, नागरिकों को मारा था, ये तीनों आतंकवादी ये थे और तीनों मारे गए.
तो मैं कहूंगा गद्दार आप लोग
पार्टी से इतने जुड़ गए हैं कि देश का विषय कौन हो जाता है. मेंटल बैलेंस खो करके उन शब्दों का प्रयोग और उस तरीके से
हम गोली का जवाब गोले से देंगे. मेरा कांग्रेस के साथियों से आग्रह है कि एक परिवार के दबाव में पाकिस्तान को क्लीन चिट देना बंद करो. ऑपरेशन सिंदूर खत्म नहीं हुआ है, ऑपरेशन सिंदूर जारी है.
गुड इवनिंग एंड वेलकम टू लेफ्ट राइट एंड सेंटर. आई एम विष्णु शोम. इट्स बीन एन इनक्रेडिबल डे इन पार्लियामेंट, अ डे व्हेन द ऑपोजिशन एंड द गवर्नमेंट क्लैश्ड on the merits of Op Sindoor, the success of Op Sindoor, with the Prime Minister personally taking on each and every point raised by Rahul Gandhi, Priyanka Gandhi as well, other Congress leaders. The points made were sharp. Why did India agree to ending this at the behest of Donald Trump? The government repeatedly saying that that is not what happened at all. The Congress arguing in some quarters that the hands of the armed forces were curtailed. They were not able to do what they actually sought to do. There also, there was a strong response from the government saying that it was Pakistan that came to the ceasefire table. There were questions on alleged Indian losses of military platforms. Again, there were references to that. There were responses, not just from the Prime Minister, but from other leaders who've been speaking over the last couple of days. Ultimately, it's about India's image internationally, whether Pakistan was gaining the upper hand. How is it that their General Asim Munir, their so-called field marshal, met Donald Trump? The fact of the matter is, at the end of the day, India won Op Sindoor. And remember, it's not over. I'm just talking about the military action which has taken place so far. And this is the point that the Prime Minister repeatedly mentioned when he said that India had hit not just terrorist targets, but also targets in military airfields. India's strikes were deep and India had set a precedent. If there were more terror attacks, then India would retaliate. Let's listen in to some of the key exchanges which took place in Parliament today.
दुनिया में किसी भी देश ने भारत को अपनी सुरक्षा में कार्रवाई करने से रोका नहीं है. संयुक्त राष्ट्र 193 कंट्री में सिर्फ तीन देश ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान के समर्थन में बयान दिया था. ओनली थ्री कंट्रीज. तमाम देश दुनिया भर से भारत को समर्थन मिला. दुनिया का समर्थन तो मिला, दुनिया के देशों का समर्थन मिला,
माननीय है.
लेकिन ये दुर्भाग्य है कि मेरे देश के वीरों के पराक्रम को कांग्रेस का समर्थन नहीं.
When we say we don't want escalation, it means मैं नहीं तपमा दूसरा नहीं मानूंगा, तीसरा नहीं मानूंगा, चौथा नहीं मानूंगा. Why? Because the goal of this exercise was to protect the Prime Minister's image. The goal of the exercise, because he has the blood of the people of Pahalgam on his hands, the goal of the exercise was to make sure that he used the Air Force to protect his image.
Manavar, aur main सलमान खुर्शीद जी को भी याद करना चाहता हूं. एक बार मैंने बड़े सवेरे में नाश्ता करता था, टीवी पर उनको रोते हुए देखा. मुझे लगा क्या हुआ, कोई बड़ी घटना हो गई. तो रोते रोते वो श्रीमती सोनिया गांधी के घर से बाहर आ गए कि बाटला हाउस की घटना देखकर सोनिया जी फूट फूट कर रो पड़ी. अरे रोना था तो शहीद मोहन शर्मा के लिए रोते, बाटला हाउस के आतंकवादियों के लिए रोना आता है। और माननीय हमें पूछते हैं कि आपने क्या किया, कोई अधिकार नहीं है पूछने का।
वैसे महोदय, मेरी माँ की आंसू की बात किए, मैं इसका जवाब देना चाहती हूँ। मेरी माँ के आंसू तब गिरे जब उनके पति को आतंकवादियों ने शहीद किया, जब वे मात्र 44 साल की थी। और आज अगर मैं सदन में खड़ी हूं और उन 26 लोगों की बात कर रही हूं, मैं इसलिए कर रही हूं क्योंकि मैं उनका दर्द जानती हूं, महसूस करती हूं।
Alright, there have been several key reactions which took place in Parliament in this feisty exchange. Let's listen in to a few more.
Donald Trump, 29 times, 29 times he said, 29 baar unhone bola ki bhaiya maine ceasefire karwaya hai. Acha, agar wo jhoot bol rahe hain to अपने भाषण में यहां प्रधानमंत्री कह दे कि वो झूठ बोल रहे हैं। इफ ही हैज द करेज ऑफ इंदिरा गांधी, लेट हिम से हियर, लेट हिम से हियर दैट डोनाल्ड ट्रंप यू आर अ लायर, दैट यू डिड नॉट मेक अ सीज फायर एंड दैट वी डिड नॉट लूज एनी प्लेन्स, लेट हिम से इट हियर।
दुनिया के किसी भी नेता ने भारत के ऑपरेशन रोकने के लिए नहीं कहा 9 तारीख को रात को अमेरिका के उपराष्ट्रपति जी ने मुझसे बात करने का प्रयास किया। मैंने कहा कि आपका फोन था, 3-4 बार आपका फोन आ गया, क्या है? तो अमेरिका के उपराष्ट्रपति जी ने मुझे फोन पे बताया कि पाकिस्तान बहुत बड़ा हमला करने वाला है, ये उन्होंने मुझे बताया। मेरा जवाब था, अगर पाकिस्तान का ये इरादा है तो उसे बहुत महंगा पड़ेगा, ये मैंने अमेरिका के उपराष्ट्रपति को कहा। अगर पाकिस्तान हमला करेगा तो हम बड़ा हमला कर करके जवाब देंगे, ये मेरा जवाब था। और आगे मेरा एक वाक्य था, मैंने कहा था हम गोली का जवाब गोले से देंगे। ये 9 तारीख रात की बात है।
All right, so Rahul Gandhi and the Prime Minister in a heated exchange over there. Joining us, Shazia Ilbi of the BJP, Sujata Paul of the Congress. And in a little while, I'll be speaking to Rajesh Narwal, father of the naval officer, Lieutenant Vinay Narwal, who tragically lost his life in Pahalgam. Shazia, let me come to you first. The Congress repeatedly makes the point that India had somehow conceded to the United States on the basis of more than 20 claims by Donald Trump. And they continue to do so despite the Prime Minister clarifying that no country had told India to stop. India didn't act on anybody telling us to stop. How would you respond to that?
I don't think it's worth responding. And I think Prime Minister's takedown of Rahul Gandhi and all his politics is completely out there for everybody to see. Rahul Gandhi understands precious little. And it's almost embarrassing to hear him. I feel bad for my country to have somebody like Rahul Gandhi as LOP. We deserve better, even if it's LOP. You know, for somebody who wants us as India, a country that the world respects and trusts, to have our Prime Minister actually call another president of a very important country names. Who says that? So obviously Rahul Gandhi should know that everybody will not come down to his level. Neither is that desirable, you see, for anybody, even for Rahul Gandhi himself. So that's one. Prime Minister categorically has said that no world leader asked us to mediate, and neither are we going to listen to that. We are a sovereign nation. We believe in our autonomy. We take our decisions as and when we feel. We assess the situation. He also talked about his meeting, which was a high-level meeting with the military officers and the armed forces when J.D. Vance called. And he made a reference to that. And he said that we will do what we have to do. That's what he said. So, and this is exactly his answer to the vice president.
All right, let me just go across
quickly.
Keep on
talking about it.
No, Paul as well.
It's embarrassing. Rahul embarrasses himself. Trump has been talking about Israel and Gaza
and
many places, would we use that in our own
Rahul
external
Gandhi
defense
is
minister,
embarrassing
our
himself
defense
by
minister,
making these
our
points.
DGMO.
Because if you look at it, if one second, Shazia, please, let me ask some questions to Sujata as well. Sujata, respond to what Shazia Ilmi says. And specifically, can you explain this point that Trump somehow got India to call it off? Because sequentially, that's never been what has taken place. It's been clarified to journalists reporting this from day one.
Good evening, Vishnu, to you, to your audiences and to my co-panelists. I'm ashamed of Prime Minister Modi. And it was something when we watched Rahul Gandhiji puncture the balloon that called itself 56 inches, but proved to be less than 5 inches. Now, as far as the Prime Minister is concerned, more important than him are those victims and those survivors with whom our thoughts are even as we speak today. Why have we insisted on this debate? Why did we stand with the government of India? Because we wanted to avenge what those terrorists had done. And if the Prime Minister, the Defence Minister and the Home Minister have now come to defend their action by saying that we informed Pakistan of the action that we were going to take, it clearly means that we were informing Pakistan of what our army was going to do, and so that the terror camps which develop under the eye of the army of Pakistan, they could provide support to those terrorists. That means they could evacuate them. That means they were weakening our forces at that point.
Okay, that's something that has been denied. And militarily, Sujata, why would anybody inform Pakistan?
Exactly.
The Pakistanis hit us at Pahalgam, the Indian armed forces hit them across terror centres. And those terror centres were destroyed.
Where is the question of informing Pakistan? But this is exactly what happened. This has been admitted by all the supposedly main leaders of the BJP. I can't call them tall because they are really short and, you know, because my heart
Shazia,
goes
let's,
out
let's
to
get
the,
to this
to
point
the
and let's get a response from the BJP. Did the government in any way, Shazia, inform Pakistan beforehand about our impending military attacks?
We know better than that. And, you know, I feel so embarrassed to be on a panel like this where we have somebody from the other party talk like a child. Because who talks like
he's
this?
He's only embarrassed. It is so idiotic. That is better not to be on a debate. You can get out of the debate. Control yourself.
One second, Sujata. Sujata and Shazia, one at a time.
No, I'm not saying that. Something is being said. I mean, this is our country we're talking about. I mean, please, Vishnu. This lady here has lost her marbles. Doesn't mean I have to, right?
No, Sujata, we can't be shouting at each other. I can't hear Shazia, and our viewers can't hear anybody. I will come back to you, Sujata. One second. Bring down Sujata's sound. Bring down Sujata's sound. Sujata, I will come back to you. I will come back to you in a moment. Shazia, make your point. Sujata, next. Yes.
So, Vishnu, Shazia. Vishnu, the whole world watched what happened during Operation Sindoor. We know the chronology of events very well. We know the fact line and the timeline. We know what happened to those terror havens. We know the terror nurseries where snakes were being bred, what happened there. And we also know what India's stance was. And when after India and those 108-minute operation, when we saw fireworks and the devastation of those terror camps, and we saw 100 terrorist bodies and more. And we actually saw funerals of those. After that, can I even answer this question? It is so idiotic. I don't know what to say. For heaven's sake, I mean, you don't respect yourself and respect your country. respect something like a military operation.
All right,
like
Shazia, hold on one second. Okay, I've got your point. Sujata,
so
has Sujata wants
about
to respond. I'm trying to spread it out.
From.
Sujata,
this is
go
coming
ahead.
From a very petty, small place. And I don't want
one
to
second,
go there.
Shazia, let me bring Shazia's sound down. Sujata, you can go ahead. And I'll come back to you, Shazia. Yes, Sujata, go ahead.
The BJP spokesperson's vocabulary is limited, so I forgive her for that. Now, you know, I'm ashamed and I apologize to Mr. Narwal for being on this debate and this kind, what he is seeing at this particular moment, because I know what he must be feeling. I understand. I do understand and I apologize for that. The fact is that the Prime Minister did not speak the word China. The Prime Minister did not use the word Donald Trump. And when he said that no country stopped us, there was no country which stood with us. They hyphenated us with Pakistan, one. Second, they only said that that they supported us in the fight against terror. They never said that they supported us in the fight against Pakistan. And you saw what happened as far as Pakistan and the funds that they were getting. World Bank was giving them $40 million, ADB $80 million. Before that,
okay.
$1
billion so
from the IMF.
That's an important point. But Sujata, right. Okay.
Yes.
Absolutely. And that's a big concern. However, per the Prime Minister, only 3 out of 193 countries backed Pakistan directly on this. But Shazia, let me come back to you. It is a fact, as I understand it, that the role of China in assisting Pakistan has not been addressed, given the fact that that association militarily is very strong. Should we not be talking about that in Parliament as well, since military leaders have referred to that?
Why should we be talking about it in the Parliament? Do we not have faith in what is going on either in diplomatic...
Because military leaders have spoken about how China has been helping Pakistan.
And if there's a question to be asked, in fact
they've said
for the
that they face
period,
a two-front
we've been wanting to ask Rahul Gandhi
right?
in the parliament and outside as to what was the deal and what was the what he signed, what was that memorandum of understanding that he signed with the Chinese? Why did he go and meet the Chinese envoy?
Yeah,
what were his comments in Doklam and Galwan? For the longest period, we have been wanting to ask. The whole nation wants to know that. So I find it very rich coming from Sujata.
What debate is this? Can I come in?
Only towing the line of a very limited Rahul Gandhi, who with his little brain that he has, who came up with this.
I think you're high.
All right. I've got a limited period of time, and I think this politicizing of national security, I want to avoid. So both of you, I'm going to pause this because I do want to speak to Rajesh Ji. Rajesh Narwal is the father of the naval officer, Lieutenant Vinay Narwal, who tragically lost his life in Pehelgam. Rajesh Ji, shukriya, aap hamare saath baat kar rahe. Kal Pehelgam mein jo aatankwadiyon ne, wo Pehelgam mein jo terrorist attack kiya tha, jahan aapka beta mara gaya tha, इन टेररिस्ट को पकड़ा गया, इनको मारा गया है और इस ऑपरेशन को हमें बताया जा रहा है कि एकदम सफल रहा है. तो आपके लिए ये एक क्लोजर है इस वक्त.
सर, इसको क्लोजर के लिए तो मैं नहीं कह सकता, क्योंकि ये आंशिक रूप से इसको कह सकते हो कि क्लोजर है, ये पूर्ण के रूप से नहीं है क्लोजर. क्योंकि जो उस दिन आतंकवादी हमला हुआ था जिसमें मेरा बेटा लेफ्टिनेंट विनय नरवाल शहीद हुए, तो ये खाली इन तीन आदमियों का तो काम नहीं है. एटलीस्ट 5-6 लोग तो इसमें वो थे कि जो असॉल्टेड थे, उनके पीछे पूरी चेन होगी, लीड होगी, और ना करके भी 2-4-6 महीने पहले से प्लानिंग इन्होंने की होगी. तो उस चेन के अंदर, उस कड़ी में जिन्होंने ये प्लानिंग करी, उसमें पोनी वाला है या कोई और है, XYZ है, मैं किसी का नाम नहीं कोट करूंगा, एक एक कड़ी को जो कि NIA भी हमारी जांच एजेंसियां इसमें जांच कर रही हैं, सभी उसमें कल्प्रिट हैं, उन सबको यही एक सजा डिजर्व करती है और ये मिलेगी. तब हमें श्रद्धांजलि, मैं समझूंगा कि 26 परिवारों को श्रद्धांजलि मिली है.
राजेश जी, ये पहलगाम अटैक के बाद इंडिया ने पाकिस्तान को ऑफ सिंदूर में उनके कई टेररिस्ट कैंप, कम से कम 9 टेररिस्ट कैंप को ध्वस्त किया है. इसका इमेजरी है हमारे पास. ये अटैक्स एकदम सक्सेसफुल थे. उसके अलावा पाकिस्तान के मिलिट्री बेसिस को हमला किया है हमारे वायुसेना ने, हमारे फौज ने, और अब ये पहलगाम का इनकाउंटर खत्म हो चुका है। जो पहलगाम में जिन्होंने ये आतंकवादी ये अटैक किया था उनको मारा गया है। तो इस वक्त आप इस जवाब से खुश है या आप और कुछ मांगते हैं?
मैंने पहले आंसर में भी ये दिया है, अपनी बात कही है, और मैं इसको एक सफल ऑपरेशन मानता हूँ। और मैं अपनी सेना के जवानों को, पैरामिलिट्री फोर्सेस के जवानों को, अधिकारियों को, और जेएनके पुलिस के अधिकारियों को जिन्होंने ये ऑपरेशन महादेव में हिस्सा लिया है और इतने दिन से वो इतने डेडिकेशन के साथ लगे हुए हैं, दिन रात समय को ना देखते हुए, तो मैं उनको सैल्यूट करता हूँ, उनके शौर्य को, अदम्य साहस को, और नमन करता हूँ मैं। परंतु आपने वही बात कही कि वही क्लोजर की बात कही है, तो अभी नहीं, जब तक इस तरह की गतिविधियां
जी
इस जमीन से खत्म नहीं होंगी
जी,
इसको खत्म नहीं होगी, तब तक मैं इसका क्लोजर नहीं।
राजेश जी, एक अंतिम सवाल आपसे।
जी जी जी
राजेश जी, एक अंतिम सवाल आपसे, आप विनय के बारे में कुछ बता सकते हैं?
विनय के बारे में बचपन से लेकर अब तक पूरी फिल्म मेरे दिमाग में है, तो पर्टिकुलर कोई क्वेश्चन हो तो मुझसे पूछिए, कि मैं बाप हूँ, मैं तो पूरा बुक भी लिख सकता हूँ उसके ऊपर। तो पर्टिकुलरली क्या बात पूछना चाहते हैं उसके बारे में?
आप वो हमेशा फौज ज्वाइन करना चाहते थे?
यस यस, सिंस चाइल्डहुड उसको फौजी जवान, फौजी वर्दी, फौजी गाड़ियां, ये सब उसको पसंद थी। जब छोटा सा बच्चा था वो, तब से उसको पसंद थी। और जैसे जैसे बड़ा हुआ, उसने ग्रेजुएशन की है, उसके बाद बीटेक किया उसने। बीटेक करते वक्त हमने नहीं सोचा था कि वो डिफेंस ज्वाइन करेगा, बट पता नहीं क्यों थर्ड ईयर में जाने के बाद उसको लगा कि मुझे ज्वाइन करनी चाहिए, कहीं ना कहीं उसका मन बना और उसने तैयारी शुरू की, और अल्टीमेटली उसने एसएसबी किया और नेवी ज्वाइन किया। ही गॉट सक्सेस। और उसके
और वो हमेशा नौसेना में
नहीं
ज्वाइन करना चाह रहा था या और कुछ सर्विस में भी? उसका फर्स्ट चॉइस नौसेना था?
सर सर, शुरू में वो चाहता था कि वो कॉम्बैटिंग में जाए, इनफैक्ट शुरू में ये चाहता था। तो फिर एयरफोर्स, फिर देखा कि भी एयरफोर्स भी ठीक है, तो एयरफोर्स के लिए भी तैयारी की उसने, तो नहीं हो पाया उसका पायलट में, तो एनी हो फिर उसने ये क्रैक किया एसएसबी और इसमें वो चला गया। बट उसके बारे में मैं एक चीज और कहूंगा, केसिन चाइल्डहुड वो बहुत ही एक सच्चा बच्चा रहा और बहुत ही कॉन्फिडेंट था, बहुत ही ऑनेस्ट रहा और अपने काम के प्रति एक से डेडिकेटेड था वो, और ये एक लीडरशिप क्वालिटी उसमें रही है सिंस चाइल्डहुड। और स्कूल टाइम में, कॉलेज टाइम में जैसे वो गेम खेलता था, तो वहाँ भी मतलब वो लीडर रहा है सबका। और अल्टीमेटली मैं तो ये कहूँगा कि वो बना ही डिफेंस के लिए था बस।
जी राजेश जी, थैंक यू सो मच फॉर स्पीकिंग टू अस, एंड आई कैन ओनली अंडरस्टैंड हाउ डिफिकल्ट इट इज टू रिफ्लेक्ट एंड टू टॉक अबाउट योर सन। इट्स जस्ट अ हॉरिफिक थॉट। वेल, देयर हैज बीन जस्टिस, दोज टेररिस्ट हैव बीन इलिमिनेटेड इन दैट ब्रॉडर एरिया इन अ वेरी सक्सेसफुल ऑपरेशन। इट्स टेकन टाइम बट इट हैज टेकन प्लेस। Some justice, but the fight against terrorism, clearly not over. It does continue.